नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का निमंत्रण दिया, कहा राज्य सरकार पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा ने नई कार्यकारिणी घोषित की, 9 उपाध्यक्ष और 4 महासचिव बनाए गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में युवा दमखम दिखा रहे हैं, कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी तालिका में शीर्ष पर। और प्रदेश भर में सर्दी ने जोर पकड़ा, नए तंत्र के असर से अगले कुछ दिन कई स्थानों पर बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस के सिलसिले में आज जयपुर में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग और प्रमोशन, मेले तथा त्यौहार, कौशल विकास, रोजगार और निवेश के काम पूरी प्रतिबद्धता के साथ किए जाएंगे।
देश और दुनिया में अगर आपको कहीं अपनी ओर खींचता होगा तो जैसा मेरे को लगता है वो सबसे पहला नंबर राजस्थान का होगा। ये हमारी सरकार ने लगातार इस पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने प्रवासी राजस्थानों को भी अपनी मातृभूमि से और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर भी हमने दिया है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का मौका भी हम देने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में 10 दिसंबर को होने जा रहे प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन को लेकर इन दिनों तैयारियां जोरों पर हैं। प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए रखे गए इस आयोजन में देश दुनिया से राजस्थानी उद्योगपतियों, निवेशकों और प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार सभी धर्मों के विकास और संरक्षण के लिए समर्पित है। आज जयपुर के सांगानेर में आयोजित दिव्य देशना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने मानव जाति को सही मार्ग दिखाकर कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जैन तीर्थों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा ने कहा कि जैन मुनियों का जीवन त्याग, तपस्या और करुणा का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे जैन मुनियों के उपदेशों को न केवल सुने बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिनाथ मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में जैन समाज की ओर से मुख्यमंत्री को मातृभू सेवक की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक और जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा ने आज नई कार्यकारिणी घोषित कर दी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संगठन के विभिन्न पदों पर कई वरिष्ठ नेताओं और नए चेहरों को दायित्व सौंपे। प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और भाजपा की सांसद प्रत्याशी डॉ ज्योति मिर्धा सहित 9 लोगों को शामिल किया गया है। वहीं महामंत्री पद पर श्रवण सिंह बगड़ी और कैलाश मेघवाल सहित 4 को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह प्रवक्ताओं की सूची में युवा विधायक कैलाश वर्मा सहित 7 नेताओं को शामिल किया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रदेश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करीब 10.25 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की। ये राशि जम्मू में आगामी 5 से 7 दिसम्बर तक आयोजित होने वाली 3री राष्ट्रीय लैक्रोज खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को दी जाएगी। राज्यपाल द्वारा पहले भी 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि लैक्रोज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को हस्तांतरित की गई थी। इस आर्थिक सहयोग और प्रोत्साहन से ही लैक्रोज की खेल की राजस्थान टीम ने विभिन्न वर्गों में अधिकृत 6 सभी प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किए। राजस्थान को इसके कारण 5 स्वर्ण 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। राज्यपाल के सहयोग से ही प्रदेश की 9 महिला और 5 पुरुष कुल 14 स्थानीय खिलाड़ी आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दिव्यांगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने आज केंद्र से दिव्यांगों और दुर्लभ आनुवंशिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का उपहास करने वाली अपमानजनक टिप्पणियों को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की तर्ज पर दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अभद्र आपत्तिजनक और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक तटस्थ स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय की आवश्यकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बारे में पीठ को सूचित किया कि सरकार में कुछ दिशा निर्देश बनाने पर विचार हो रहा है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हास्य किसी की गरिमा की कीमत पर नहीं हो सकता। गौरतलब है कि न्यायालय एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट सहित कुछ लोगों पर दिव्यांगजनों को लेकर चुटकुलों के संबंध में याचिका दायर की गई थी। अदालत ने उन्हें भविष्य में अपने आचरण के प्रति सावधान रहने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी से निपटने के लिए कड़े कानून पर न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार के दिव्यांगजन कैरियर सेंटर के सहायक निदेशक गुरुदयाल चंद ने आकाशवाणी को बताया कि इस पहल से दिव्यांगों के साथ होने वाले अभद्र व्यवहार पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि सेंटर की ओर से आगामी 3 दिसम्बर को दिव्यांगजन दिवस पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।
तहे दिल से मुख्य न्यायाधीश में शुक्रगुजार हैं कि वो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और ये एक बहुत आवश्यक कदम है। इसके साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि ये सराहनीय कदम सिर्फ सरकारों का जिम्मेदारी में नहीं आता या किसी संस्थान की जिम्मेदारी में नहीं आता। ये सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको इज्जत देना, सबका सम्मान करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि ये पूरा समाज समझेगा कि किसी भी इंसान की गरिमा को ठेस पहुंचाकर या खुद को ऊंचा बताकर कोई भी समाज ऊपर नहीं बढ़ सकता। इसी संकलन में मैं आपको ये भी सूचित करने जाता हूँ, 3 दिसंबर जो कि वर्ल्ड डिसेबल डे है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और 3 और 4 दिसंबर को बड़े पैमाने पे रोजगार मेले का भी आयोजन कर रहे हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 20 स्वर्ण सहित 35 पदक जीतकर कर्नाटका की जैन यूनिवर्सिटी तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है। पदक सूची में अमृतसर की गुरुनानक देव यूनिवर्सिटी 14 स्वर्ण पदकों सहित 27 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 12 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 21 पदक हासिल कर तीसरे स्थान पर चल रही है। इन खेलों में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और अजमेर के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने 3-3, डॉक्टर केएन यूनिवर्सिटी ने 2 और कोटा विश्वविद्यालय ने अब तक 1 मेडल जीता है। अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक आज नोएडा के यमुना भवन में आयोजित हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्री तथा उच्चाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य की सरकार अंतिम छोर तक जल उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक आज नोएडा के यमुना भवन में आयोजित हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्थान सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्री तथा उच्चाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य की सरकार अंतिम छोर तक जल उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सरकार की प्राथमिकता में है। प्रदेश में मतदाता सूचियों के लिए चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ लगातार मतदाताओं से संपर्क कर डाटा जुटाने में लगे हैं। इस काम में कई सामाजिक संगठन भी बीएलओ का सहयोग कर रहे हैं। वहीं कई जिलों में प्रशासन की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया जा रहा है। पाली में जिला प्रशासन की ओर से युवाओं के जरिए छोटे छोटे वीडियो और रील्स बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। वहां लाउड स्पीकर और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। इधर कई जिलों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया जा रहा है। कोटपूतली बहरोड जिले में करीब 84% डिजिटाइजेशन का काम पूरा होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका गोस्वामी ने 30 बीएलओ को सम्मानित किया। झुंझुनू के मंडावा में सहायक निर्वाचन अधिकारी भी घर घर जाकर पुनरीक्षण कार्य का जायजा ले रहे हैं। नवंबर महीने के कुछ दिन शेष रहते प्रदेश भर में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। मौसम विभाग ने आज से एक नई पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद जताते हुए जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 29 और 30 नवंबर को दक्षिणी पूर्वी भागों में कहीं कहीं कोहरा छाए रहने की संभावना है। नए विक्षोभ के असर से दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में गिरावट आने और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है।
फिलहाल एक पश्चिम विक्षोभ के आंशिक असर से दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और इसके असर से आज खासकर जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर 28 नवंबर को भी इन्हीं भागों में जारी रहने की संभावना है। विशेषकर उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की वजह से अगले 48 घंटों में दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट होने की संभावना है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश का निमंत्रण दिया। कहा, राज्य सरकार पर्यटन और औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा ने नई कार्यकारिणी घोषित की। 9 उपाध्यक्ष और 4 महासचिव बनाए गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में युवा दमखम दिखा रहे हैं। कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी तालिका में शीर्ष पर। और प्रदेश भर में सर्दी ने जोर पकड़ा। नए तंत्र के असर से अगले कुछ दिन कई स्थानों पर बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।